खुलासा मतलब ये कि हम इन मानों को जो ऊपर बयान हुए वेद की निस्बत कबूल कर सकते हैं, और हम ख्याल कर सकते हैं कि जैसा कि कुरान शरीफ ने हमें हिदायत दी है वेद का भी यही मुद्दा है। मगर दो बातों का साबित होना ज़रूरी है। अव्वल ये कि वेद का भी यही मज़हब हो जो कुरान ने ज़ाहिर किया है कि ये सब चीज़ें क्या आसमान के अजराम और क्या ज़मीन के अनासिर और क्या ज़र्रा ज़र्रा मखलूक़ात खुदा के हाथ से निकले हैं। क्योंकि अगर ऐसा तस्लीम ना करें तो फिर इन चीज़ों की सिफ़ात परमेश्वर की सिफ़ात नहीं हो सकती, और इन चीज़ों के गुण परमेश्वर के गुण नहीं कहला सकते, और इन चीज़ों की ताकतें परमेश्वर की ताकतें नहीं कहला सकती। मगर अफसोस के आर्या समाजी असूल के मुवाफिक ज़र्रात यानी परमाणु और जीव यानी रूह ये सब अनादि और कदीम और गैर मखलूक हैं, इसलिए इनके गुण और सिफात और खवास और ताकतें भी गैर मखलूक और अनादि हैं, परमेश्वर को इनमें कुछ दखल नहीं। बस अगर वेद का यही मज़हब है तो मानना पड़ता है कि वेद ने आग के सिफात बयान करके आतिश परस्ती सिखाई है, और सूरज की उस्तुत और माहिमा करके सूरज परस्ती सिखाई है। हाँ, अगर इन सब चीज़ों को परमेश्वर से निकली हुई मान लें और इनकी ताकतें उसकी ताकतें मान लें तो फिर एतराज़ बाकी नहीं रहता। और याद रहे कि इसके साथ दूसरी शर्त भी है, और वो ये है कि वेद में इन सदहा श्रुतियों के मुकाबले पर जिनमें सूरज और आग वगैरह की उस्तुत व माहिमा मौजूद है, कम अज कम 50 या 60 या 70 ऐसी श्रुतियाँ भी पाई जाएं जिनका ये मतलब हो कि ये चीज़ें हरगिज़ परस्तिश के लायक नहीं और ना इनसे मुराद मांग सकते हैं। इन दो बातों के साबित हो जाने से वेद इस लायक होगा कि इस इल्ज़ाम से उसको बरी कर दिया जावे, और वो फ़र्द करारदाद जुर्म उस पर से उठा ली जाए जो बड़े बड़े अहलुर राय उस पर लगा रहे हैं। और अगर ये बातें साबित नहीं तो इल्ज़ाम साबित है। फिर एक और एतराज़ आर्या साहिबों के असूल पर है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पर भी तवज्जो करेंगे, और वो ये है कि ये करार दिया गया है कि गो दुनिया के लिए एक अजली और अबदी सिलसिला है जो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने कदीम से यही तरीक मुकर्रर कर रखा है कि हमेशा वो संस्कृत ज़ुबान में और आर्यावर्त में आसमानी किताब पैदाइश के इब्तिदा में भेजता रहता है। ये मकूला तीन तौर से गलत है। अव्वल खुदा ताला की रहमत आम्मा के बरखिलाफ़ है, यानी जिस हालत में दुनिया में मुख्तलिफ़ बिलाद और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें पाई जाती हैं और एक मुल्क के बाशिंदे दूसरी कौम की ज़ुबान से ना आशना हैं, बल्कि इस ज़माने से पहले तो ये हालत रही है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के वजूद से भी बेखबर था, और आर्यावर्त में ये ख्याल था कि हमालिया पहाड़ के परे कोई आबादी नहीं। तो इस सूरत में, जबकि दुनिया के तफरीका की ये सूरत थी हमेशा और करोड़हा बरसों से आसमानी किताब को एक ही मुल्क तक महदूद रखना, ये खुदा की उस रहमत के बरखिलाफ़ है जो उसके रब्बुल आलमीन होने की शान को ज़ेबा है, और इसके बरखिलाफ़ जो कुरान शरीफ ने फरमाया है वो नहायत माकूल और करीन इंसाफ है। और वो ये कि वो फरमाता है वह इम मिन उम्मतिन इल्ला खलाफीहा नज़ीर, फातिर 25, यानी कोई बस्ती और कोई आबाद मुल्क नहीं जिसमें पैगंबर नहीं भेजा गया। और फिर फरमाता है यतलू सुहुफम मुतहरतन फीहा कुतुबुन कय्यिमा, अलबैना 3-4, यानी ये किताब जो कुरान शरीफ है ये मजमूआ उन तमाम किताबों का है जो पहले भेजी गई थी। इस आयत का मतलब ये है कि खुदा ने पहले मुतफर्रक तौर पर हर एक उम्मत को जुदा जुदा दस्तूरुल अमल भेजा, और फिर चाहा कि जैसा कि खुदा एक है वो भी एक हो जाएं, तब सबको इकट्ठा करने के लिए कुरान को भेजा, और ख़बर दी कि एक ज़माना आने वाला है कि खुदा तमाम कौमों को एक कौम बना देगा और तमाम मुल्कों को एक मुल्क कर देगा और तमाम ज़ुबानों को एक ज़ुबान बना देगा। सो हम देखते हैं कि दिन ब दिन दुनिया इस सूरत के करीब आती जाती है और मुख्तलिफ मुल्कों के ताल्लुकात बढ़ते जाते हैं। सियाहत के लिए वो सामान मैसर आ गए हैं जो पहले नहीं थे। ख्यालात के मुबादले के लिए बड़ी बड़ी आसानियाँ हो गई हैं। एक कौम दूसरी कौम में ऐसी धंस गई है कि गोया वो दोनों एक होना चाहती हैं। बड़े और मुश्किल सफ़र बहुत सहल और आसान हो गए हैं। अब रूस की तरफ से एक रेल तैयार हो रही है کہ جو 40 دن میں تمام دنیا کا دورہ ختم کر لے گی اور خبر رسانی کے خارق عادت ذریعے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان مختلف قوموں کو جو کسی وقت ایک تھیں پھر ایک ہی بنانا چاہتا ہے، تا پیدائش کا دائرہ پورا ہو جائے اور تا ایک ہی خدا ہو اور ایک ہی نبی ہو اور ایک ہی دین ہو۔ یہ بات نہایت معقول ہے کہ تفرقہ کے زمانے میں خدا نے جدا جدا ہر ایک ملک میں نبی بھیجے اور کسی ملک سے بخل نہیں کیا، لیکن آخری زمانے میں جب تمام ملکوں میں ایک قوم بننے کی استعداد پیدا ہو گئی تب سب ہدایتوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی زبان میں جمع کر دیا جو ام الالسنہ ہے، یعنی زبان عربی۔ کیا کوئی کانشیس اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ سنسکرت زبان اور آریہ ورت میں تو کروڑ ہا مرتبہ وید نے جو بقول آریہ پرمیشر کا کلام ہے جنم لیا، لیکن کسی اور زبان میں اور کسی اور ملک میں ایک مرتبہ بھی اس کا ظہور نہ ہوا؟ اگر تناسب کا مسئلہ کچھ چیز ہے تو اس سے ہی ثبوت دینا چاہیے کہ پرمیشر نے اس ملک کے لوگوں سے اس قدر کیوں پیار کیا اور دوسرے ملکوں سے کیوں ایسی بیگانگی ظاہر فرمائی۔ کون سے عمدہ اور پاک کرم یہ ملک ہمیشہ کرتا رہا ہے جن کی وجہ سے یہ وید کی عزت ہمیشہ اس کو دی جاتی ہے؟ کیا پرمیشر جانتا ہے یا نہیں کہ دوسرے ملک بھی اس بات کے محتاج ہیں کہ کبھی ان کی زبان میں بھی کلام الہی نازل ہو اور ان میں بھی وحی الہی پانے والے پیدا ہوں؟ اور اگر جانتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ ہمیشہ وید آریہ ورت میں ہی آتا ہے اور سنسکرت زبان میں ہی ہوتا ہے؟ بیان تو کرنا چاہیے کہ یہ پکش پات کیوں ہے اور دوسرے ملکوں کا کیا گناہ ہے جن کی قسمت میں یہ نعمت نہیں اور ہمیشہ کے لیے وہ اس فخر سے بے نصیب ہیں کہ ان کے ملک میں اور ان کی زبان میں خدا کی کتاب نازل ہو۔ پھر دوسرا پہلو اعتراض کا یہ ہے کہ اگر فرض محال کے طور پر یہ بھی خیال کیا جائے کہ وید کل دنیا کے لیے آیا ہے اور خدا تعالیٰ پر یہ بخل جائز رکھا جائے کہ اس نے دوسرے ملکوں اور قوموں کو اپنے شرف مکالمہ سے ہمیشہ کے لیے محروم رکھا، تو اس صورت میں اس قدر تو چاہیے تھا کہ پرمیشر وہ زبان اختیار کرتا جو تمام زبانوں کی ماں ہو اور زندہ زبان ہو، نہ سنسکرت، کہ کسی طرح وہ تمام زبانوں کی ماں نہیں کہلا سکتی اور نہ وہ زندہ زبان ہے، بلکہ مدت ہوئی کہ مر گئی اور کسی ملک میں وہ بولی نہیں جاتی۔ ہاں، یہ درجہ ام الالسنہ ہونے کا عربی زبان کو حاصل ہے اور وہی آج ان تمام زبانوں میں سے جن میں آسمانی کتابیں بیان کی جاتی ہیں زندہ زبان ہے، اور ہم نے بڑی تحقیق سے تمام زبانوں کا مقابلہ کر کے بہت سے قوی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ درحقیقت عربی زبان ہی ام الالسنہ ہے۔ اس لیے وہی زبان اس لائق ہے کہ کل قوموں کو اس زبان میں مخاطب کیا جائے، اور ہم نے عربی زبان کے ام الالسنہ ہونے کے بارے میں ایک کتاب تالیف کی ہے، اور جو شخص اس کتاب کو پڑھے گا میں خیال نہیں کرتا کہ بجز تسلیم کے کسی طرف اس کو گریز کی راہ مل سکے، کیونکہ اس میں اعلیٰ درجے کی تحقیقاتوں سے اور ہزار ہا مفردات کے مقابلے سے اور نیز اس علمی خزانے سے جو عربی مفردات میں پایا جاتا ہے عربی کا تمام زبانوں کی ماں ہونا ثابت کر دیا ہے۔ تیسری وجہ آریہ صاحبوں کے اس اصول کے غلط ہونے کی کہ وید پر پرمیشر کی مہر لگ چکی ہے اور اس کے بغیر وحی الہی کا دروازہ بند ہے۔ ہمارا ذاتی تجربہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قریباً ہر روز خدا تعالی ہم سے کلام کرتا ہے اور اپنے اسرار غیب اور علوم معرفت سے مطلع فرماتا ہے۔ بس اگر یہ لاف و گزاف در حقیقت وید میں ہے کہ آئندہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا تو بعد اس کے ہمیں اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ امور مشہودہ محسوسہ کے برخلاف کہنے والا بالیقین کاذب اور سخت کاذب ہوتا ہے۔ جس عالیشان وحی سے ہمیں خدا نے مشرف کیا ہے ہم وید میں اس کا نمونہ نہیں دیکھتے۔ یہ کلام خارق عادت باتوں اور غیب سے پر ہے جیسا کہ سمندر پانی سے، اور اکثر عربی میں جو نبوت کی کلام کی تخت گاہ ہے نازل ہوتا ہے، اور کبھی اردو میں اور کبھی فارسی میں اور بعض اوقات انگریزی زبان میں بھی ہوا ہے۔ اور اگر آریہ صاحبان یہ کہیں کہ کون سا نشان ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے، سو میں کہتا ہوں کہ آپ پنڈت لیکھ رام کے متعلق جو پیش گوئی تھی جس میں اس کے مارے جانے کا دن اور تاریخ بھی درج تھی، क्या वो आर्या साहिबों को भूल गई? क्या वो एक ही पेशगोई आर्या साहिबों के लिए काफ़ी नहीं थी? और ऐसी पेशगोइयाँ 100,000 से भी ज़्यादा हैं, और एक फ़ौज गवाहों की उनके साथ है, जिनमें से कई मौज़ज़ आर्या भी हैं। बस इससे ज़्यादा हम खुदा के मुकालमा का और क्या सबूत दे सकते हैं, बल्कि हम इसी जगह के चंद आर्या साहिबों को, बल्कि 100,000 और आर्या साहिबों को भी गवाही के लिए पेश करते हैं। और इस जगह इस बात का जिक्र करना भी नामुनासिब ना होगा कि बाज़ नादान 100,000 पेशगोई के मुकाबले पर 1-2 पेशगोइयों का जिक्र करके कहते हैं कि वो पूरी नहीं हुई। लेकिन ये खुद उनका कसूर फहम है, बल्कि कोई भी ऐसी पेशगोई नहीं कि वो अपने अल्फाज के मुताबिक पूरी नहीं हो चुकी, या उसमें से कोई हिस्सा पूरा नहीं हो चुका जो दूसरे हिस्से के किसी वक्त पूरा हो जाने पर गवाह है। सच्ची गवाही को छुपाना और झूठी हुज्जतें पेश करना उन लोगों का काम नहीं जो खुदा से डरते हैं। खासकर आर्या साहिबों को वो निशान फरामोश नहीं करना चाहिए जो खुदा ने उनको अपने ज़बरदस्त हाथ से दिखलाया और 2 करोड़ इंसानों को उस पर गवाह किया। ऐसे ज़बरदस्त निशानों का इनकार करके फिर तकजीब करना, ये खुदा के साथ लड़ाई है। वेद की ये तालीमें हमने बतौर नमूना के बयान की हैं, और हम लिख चुके हैं कि कुरान शरीफ की तालीमें इसके मुखालिफ हैं। वो दुनिया में तौहीद कायम करने आया है, उसमें तौहीद की तालीम शमशीर बारहना की तरह है। उसको अव्वल से आखिर तक पढ़ो। वो ये नहीं सिखलाता कि खुदा के बग़ैर किसी चीज़ की परस्तिश करो और उससे मुरादें मांगो और उसकी माहिमा और उस्तुद बयान करो। वो खुदा की किताबों को ना किसी ख़ास मुल्क से महदूद करता है और ना किसी ख़ास कौम से। वो बयान करता है कि वो एक दायरे को ख़त्म करने आया है जिसके मुतफर्रक तौर पर तमाम दुनिया में नुक्ते मौजूद थे। अब उन तमाम नुक्तों में ख़त खींच कर उन सबको एक दायरे की तरह बनाता है, और इस तरह पर तमाम कौमों को एक कौम बनाना चाहता है। लेकिन ना वक्त से पहले, बल्कि ऐसे वक्त में जबकि खुद वक्त गवाही देता है कि अब ज़रूर ये तमाम कौमें एक कौम हो जाएंगी।